늘 고운데요니 사모토데 दरखोले अपनी रहमत दे दरखोल दे अपनी रहमत दे दरखोल दे अपनी रहमत दे दर खोल दे अपनी रहमत दे दर खोल दे मौला रहमत दे दर खोल दे मौला रहमत दे सडे ऐब गुना सारी माफ चा कर दर खोल दे मौला रहमत दे दर खोल दे मौला रहमत दे साडे ऐब गुना सारे माफ चा कर साडे ऐब गुना सारे माफ चा कर दर खोल दे मौला अपनी रहमत दे दर खोल दे मौला रहमत दे साडे ऐब गुना सारे माफ चा कर कर करम दी बारिश ई मजलिस ते मीर मौला कर करम दी बारिश ई मजलिस ते कर करम दी बारिश ई मजलिस ते हाय हाय कर करम दी बारिश ही मजलिस ते सारे सीने दे गुनाह साफ कर दे कर करम दी बारिश ही मजलिस ते सारे सीने दे गुनाह साफ चा कर दे सारे सीने दे गुना साफ चा कर दर खोल दे मौला रहमत दे सारे ऐब गुना सारे माफ चा कर कर रहम कर करम दी बारिश मजलिस ते सारे सीने तो बुक्स साफ चा कर सारे सीने तो बुक्स साफ सा कर सारे सीने तो किबर साफ सा कर सच है असा मुजरिम सच है हक है असा मुजरिम सच है सच है असा मुजरिम सच है असा मुजरिम पर तेडियां ओ सुनाया पर तेडियां सानू माफ चा कर सच है असा मुजरिम पर तेडियां सानू माफ चा कर सानू माफ चा कर दर खोले मौला सहमत दे साडे है गुना सारे माफ चा कर वंजू बख्शे बख्शाए ही मजलिस तो वंजू बख्शे बख्शाए ही मजलिस तो वंजू बख्शे बख्शाए ही मजलिस तू अपनी रहमत साढ़े ते खास चा कर मौला अपनी रहमत साढ़े ते खास चा कर वो साढ़े ऐब गुनावा माफ चा कर साढ़े ऐब गुना साढ़े माफ चा कर वंजू बख्शे बख्शाए मजलिस तो वंजू बख्शे बख्शाए मजलिस तो अपनी रहमत साढ़े ते खास चा कर नहमदहु व नसल्लि अला रसूलिहिल करीम قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد هادي الهدى البرهان اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلي الغالب مره اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلي وصحبه وبارك وسلم أما بعد غور طلب بات ہے कौन आदमी जो है इस दुनिया में फिक्रमंद रहना पसंद करता है तफरात में गिरा हुआ परेशानी में मुब्तला गम मुसीबतें कोई भी आदमी इसको पसंद तो नहीं करता कोई जीशोर समझदार आम हर इंसान जो है वो इन चीज़ों से परहेज करेगा और दूर भागेगा नफरत करेगा कि किसी किस्म का कोई फिक्र ना हो गम ना हो परेशानी ना हो तफक्कर ना हो जिंदगी जो इंसान की आसान हो ये हर आदमी का एक इमेज है ख्याल है तसव्वुर है और यही इंसान की जिंदगी है एक एम है इंसान के पे हम ऐसे हों और यकीनन इस पे इंसान कोशिश करता है करता होगा जैसे मैंने अर्ज किया कि कोई पसंद नहीं करता इस बात को कोशिश कैसी करता है इस चीज अब ये मुनासिब इस कोशिश पर तो अगर कोशिश हमारी ऐसी होगी भाई जैसे कांटों वाला बिस्तरा है और बिस्तरे पे वो लेट जाता है तो जब सुबह उठेगा तो नींद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता बेचारे, कितने बुरा हालत होंगे सुबह उसके, कांटे चुपते रहेंगे, उठे सोएगा कैसे, नींद कैसे आएगी उसको। तो अगर उस बिस्तर को अपने तय अपने तरीके से झाड़ पूछ करता है लेकिन कांटे वहीं मौजूद हैं तब फिर सोएगा, तब उसके साथ ये मामला होंगे। तो अगर ऐसी कोशिश है तो फिर फिक्र इंसान की खत्म तो नहीं हो सकते, तो फकरात खत्म नहीं हो सकते, परेशानियां को कोई हल निकलता नहीं। हम बस अपनी तरफ से जो अपनी हमारी कोशिशें हैं उनको हम कोशिश समझते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने हालात पे हम इल्जाम दे देते हैं कि भाई ये परेशानी जो है, अमीर आदमी अपनी दौलत की वजह से कहेगा मैं परेशान हूँ, अपनी दौलत को इल्जाम देगा, गरीब आदमी अपनी गुर्बत की वजह से बताएगा कि मैं गरीब हूँ इसलिए मैं परेशान हूँ, बीमार जो होगा बेचारा कहेगा मैं बीमार हूँ मैं इसलिए परेशान हूँ। तो हर आदमी कोई ना कोई रीजन दे के वजूहत दे के अपनी परेशानी को जाहिर करता है, हकीकत ऐसा नहीं है, मामला कुछ ऐसा है कि हम इस चीज को समझ नहीं पाए और हमने इसका सही इलाज नहीं किया। गलत किसी चीज का इलाज किया है तो गलत इलाज से वो मर्ज बढ़ते ही जाता है, इसी वजह से जो हम इलाज करते हैं इसका जो हम समझते हैं उसकी कोशिश करते रहे उससे क्या हुआ कि फिर मर्ज बढ़ता रहता है आदमी को। कोई भी ऐसा आदमी मुझे तो नजर बहुत ही कोई परसेंटेज हो तो आदमी कह जी मैं बहुत बिल्कुल 100% फारिग हूँ, कोई मुझे फिक्र नहीं हुआ, गम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। किसी ना किसी गम इंसान जरूर लग रहा, वजह यह है कि भाई हमें इसका इलाज नहीं हमने मुनासिब किया, इस गम से निकलने का इलाज हमने नहीं किया। कोई आदमी भी नहीं है जो उस वक्त इस चीज से उबर रहा हो फारिग हो। तो आसान इलाज है बड़ा इसका, बहुत आसान इलाज है। इसका इलाज क्या है? गमों को दूर करने का इलाज गम है, नहीं समझे ना? तमाम चीजों को खत्म करने का इलाज फिक्र मुसीबत परेशानी और गम, इसका इलाज क्या है बोले? गम है। गम का इलाज किससे हो रहा है? देखिए कैसा अच्छा इलाज है। गम का इलाज क्या है? एक गम नहीं रहेगा, सबसे बेहतरीन इंसान वो हो जाएगा। अब हम तो हैरान तो बड़े हुए इस बात पर कि ये कैसे किया गम का इलाज गम से। मेरे भाई वो बात यह है दरअसल कि हैं तो दोनों गम। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि चीज एक ही होती है लेकिन हिस्ट्री बहुत मुख्तलिफ होती है इसकी। कोई आपसे मिलता है और गले मिलता है बड़े जोश के साथ, बड़े जोर से दबाता है, अब वो क्या है उसका दबाना है ना, लेकिन इस दबाने में फर्क होगा। वही दबाना जो होगा आप महसूस कर लेंगे कि ये दुश्मनी से दबा रहा है मुझे और आपको तकलीफ होगी। वही दबाना अगर किसी तकलीफ को दूर करने के लिए होगा आप समझ जाएंगे नहीं ये मेरी फेवर में बात कर रहा है, दूर करना है क्या चीज दबाना। वही बिछड़ा हुआ एक साथी है बहुत देरी के बाद मिला तो आपको जोर से दबा रहा है तो वो दबाना क्या होगा? मोहब्बत का दबाना हो, चीज यही है। बाज दफा तो बिछड़े महबूब हैं एक दूसरे को मिल गए वो भी जोर से दबा रहा है वो भी जोर से दबा रहा है लेकिन कहते हैं अब दिल नहीं भरा अभी और जोर से दबाए। ये दबाना क्या है? चीज एक ही है, बात समझे? आंसू, आंख एक होती है, पानी एक ही निकलता है लेकिन आंसुओं की स्टोरी बड़ी मुख्तलिफ होती है, बड़ी मुख्तलिफ होती है। कभी कोई आंसू कुछ गमासी करता है पैगाम दे जाता है, कभी कोई आंसू कुछ और पैगाम दे जाता है, कभी कोई आंसू कुछ और पैगाम दे जाता है। حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ واقعات اس سلسلے میں ہیں, ان کے آنسو میں آپ کو بتاتا ہوں. جبریل علیہ السلام تشریف لائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے آپ کو ہجرت کا فیصلہ کر دیا ہے, اب آپ ہجرت فرمائیں. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہجرت کا ایک ساتھی بھی مقرر فرما دیا ہے, بغیر پوچھے بتا دیا ہے, ایک ساتھی بھی آپ کے ساتھ ہوگا. تبھی آپ نے پوچھا بھی نہیں تھا تو جبریل نے خود کہا کہ انتخاب ہے, اللہ ہے آپ کے ساتھی کا, اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا شان صدیق کی آپ اندر تعالیٰ, یہ تو ایک جھلکی ہے آپ کی, کیا انتخاب تھا اللہ پاک کا. نبی پاک سنا ٹھیک, اب ہجرت کا حکم ہو گیا, سرکار دور سے ہجرت کی تیار. تبرانی میں حضرت عثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں, اور وہ انداز نہیں ہے جس انداز سے ہمیشہ آتے تھے. آپ نے دیکھا کہ آپ کو چہرہ مبارک ڈھانپا ہوا ہے اور تاثر بھی کچھ مختلف نظر آئے. تعجب اس چیز سے ہوا بس عائشہ کو کہ یہ تو معمول یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے یار سے ملنے کے لیے دو وقت مقرر کیے ہوئے تھے, کتنی محبت ہوگی اس وقت سے. روزانہ کا معمول تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ صبح بھی ملاقات اور شام کو بھی ملاقات ابو بکر صدیق سے. عائشہ صدیقہ کہنے لگی نہ یہ صبح ہے نہ یہ شام ہے, یہ تو زوال کا وقت ہے, سخت گرمی کا وقت ہے, اس وقت آپ کے آنے کا مقصد. آپ فوراً گئی اور اپنے ابا کو بتایا کہ ابا جان نبی پاک تشریف لائے ہیں, اور اس طرح چہرہ بھی ڈھپا ہوا ہے, اور لگتا ہے کوئی ڈفرینٹ معاملہ ہے. خیر نبی ہم تشریف لائے, سرکار تو ہم تشریف لائے. ابو بکر صدیق نے فوراً اپنی چرپائی کو صاف کیا, بستر بنایا فرسٹ کلاس بیٹھنے کے لیے. آئے تو دیکھا مختلف انداز میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور کہنے لگے کہ کمرہ خالی کر دیں, یہ جو بیٹھے ہیں ان کو نکال دیں باہر. تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو عائشہ اور اسماء ہیں, دونوں بہنیں تھیں نا, یہ تو گھرانے والے ہیں, گھر والے لوگ ہیں, میری بیٹی ہیں, کوئی بات نہیں ایسی. تو آپ نے بھی فرمایا کہ بھائی اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دے دیا ہے. ابھی اتنی بات کی تو ابو بکر صدیق جو تھے اوپر کا سانس اوپر, نیچے کا سانس نیچے رہ گیا. بہت بڑی خبر تھی کہ بھائی گئے نبی پاک جا رہے ہیں. اب ضرورت تو یہ نہ ہو کہ مجھے ساتھ لے جائیں یا مجھے کچھ کریں. اب وہ ایک دم ان کا حال خراب ہو گیا سن کے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دے دیا کہ آپ ہجرت فرمائیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی کہتی ہیں کہ میرے والد کی بڑی حالت خراب ہوئی اس وقت جب سنا. تو اگلا فکر جو نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی میرے ساتھ جا رہے ہو. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی اپنی زندگی کو اپنے ابا کو ایسا نہیں دیکھا کہ اس قدر جذبات اور اس قدر شدت سے محبت اور جذبات کے اندر وہ روئے ہیں, آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں ابو بکر صدیق کے. تو آنکھیں کس کی تھیں؟ صدیق اکبر کی تھیں. اور آنسو کس کے تھے؟ صدیق اکبر کے تھے. یہ کون سے آنسو تھے جو آنکھ سے نکلے آپ کے؟ آنکھ جو آنکھ سے آنسو جو نکلے وہ صدیق کے آنسو جو تھے, یہ محبت کے آنسو تھے. آنکھیں وہی تھیں. غارِ ثور کی طرف پہنچتے ہیں, کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کبھی آپ اندر نہ جائیں, میں اس کو صاف کروں گا پہلے. پتہ نہیں کب کی غار ہے, پرانی, اس میں کیا ہوگا. اور کہنے میں اس کو صاف کروں گا. آپ کو روک لیا اور آپ نے ہاتھ سے اندھیرا تھا ساری جگہوں کو صاف کیا. اشاعت العرض ہوتے تھے وہاں پر, कहीं भी चीज बिच्छू वगैरह सब चीज सबको निकाला, बाहर किया, साफ किया जहां तक कर सकते थे, सुराखों को बंद किया, अपने पास जो कपड़ा था बांधते फाड़ते जाते थे, उन सुराखों को बंद करते जाते थे। एक सुराख रह गया और उस सुराख में क्या किया आपने कि जब नबी वहां तशरीफ ले आए, कि आप तशरीफ ले आए उसके इंतजाम भी मैं कर लूंगा, दिल में सोचा। जैसे अबू सदीक बैठे तो नबी पकड़ ने फौरन अपना सर मुबारक जो था आपकी गोद में रख दिया। ये इतना बड़ा रश्क का मुकाम है, अबू बकर सदीक को ये वो मुकाम अता किया अल्लाह पाक ने कि किस कदर करीब था चेहरे मुबारक, कार छोटी सी थी, किस कदर करीब होगा कि सांस एक दूसरे के सांस के साथ मिल रहे हो, कितना कुर्ब होगा और कितनी देर आपने देखा होगा उस चेहरा मुबारक को, और नबी उन्होंने क्या कुछ दिखाया होगा अपने चेहरे से सदीक को, और क्या कुछ मार्फत आपके सीने में गई होगी अबू सदीक के, किसी सहाबी को यह एजाज नहीं है। इस पर दूसरे नंबर पर सहाबी आते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला, उनको तड़पता देखें सारी जिंदगी, एक वक्त में जाकर एक वक्त में जाकर कहने अबू सदीक एक बात करते हैं, सौदा करते हैं मैं और आप दोनों, वक्त गुजर गया खिलाफतें आ गई, उस वक्त की बात कर रहा हूं, नबी पाक तशरीफ ले गए तो कहने क्या सौदा करते हैं, मोहब्बत तो आपस में बहुत थी, क्या सौदा करते हैं, ऐसा करें मेरी जिंदगी की सारी नेकियां जितनी आप ले लें, जो कुछ मैंने अमाल किए मैं आपको देता हूं, लेकिन वो एक रात मुझे दे दें जो आपने वहां गारे सौर में गुजर, क्या देखिए। तो उस वक्त क्या हुआ, अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो सुराख था, सुना होगा आपने वाकई कई दफा, लेकिन जितनी दफा सुने कम है अल्हम्दुलिल्लाह, हर दफा नया ही मजा आता है। तो वो जो सुराख था उस सुराख पे आपने क्या किया, कपड़ा तो खत्म हो गया था, आपने अपना अंगूठा रख दिया पांव का ताकि कोई चीज वहां से निकल ना पाए। यहां अहले सैन ने बड़ी प्यारी बात की है, वो मैं कहता चलूं आपसे, वो गया कि उसमें से सांप था, उसने डंक मारा अबू सदीक को, डंबल डंक लगा तो तकलीफ हुई होगी ज्यादा, अब तकलीफ के साथ ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तकते थे, तो फिर वही आंसू उसी आंख से वही पानी, अब वो पानी जो गिरता है आंखों से आंसू अबू सदीक के रुख मुस्तफा के ऊपर गिरते हैं, अल्लाह वर्द तर्ज बदल गया, पहले मोहब्बत से आंसू निकले थे लेकिन दूर थे, अब निकलते हैं आंसू किधर गिरते हैं, रुख कहते हैं चेहरे मुबारक को, चेहरे मुस्तफा पे वहां से गिरना शुरू हो जाते हैं। तो वो कौन से आंसू थे, ये किस चीज को जज्बात को शो कर रहे हैं, वो तो बे इंतहा मोहब्बत के मोहब्बत से निकले थे, ये जो निकले आंसू चेहरे मुबारक वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह, ये इंतहाई कुरब के ऊपर जो थे मुस्तफा रज़ियल्लाहु से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उस कुरब मुबारक की शुक्री के तौर पर अल्लाह ताला ने आंसू निकाल दिए चेहरे से, किसी गम से नहीं रो रहे थे, किसी फिक्र से बढ़ के अल्लाह के शुक्र में रो रहे थे कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है कि इन आंखों से मैं दीदार मुस्तफा कर रहा हूं, आंसू वही थे। वो जो अहले सुन्नत ने बात की है कि जो सांप जो डंक मारा वो क्या किस्सा था, न्याय को नक्ते निकालते हैं आशिक पूरे अजीब किस्म के, फरमाया बात यह थी कि उस गार शोर में अशातुल अस्क मालूम था कि किसी व ना किसी वक्त यहां पर नबी एक मेहमान होंगे हमारे इस गार के अंदर, तो उसमें वो सांप जो था मुद्दत उसे इंतजार में था कि नबी पाक आएंगे तो उनकी ज्यारत करूंगा, तो उसने गुस्से में नहीं मारा था सदी के पांव पर, बल्कि क्या था रुकावट है, तो कि मुझे रोक क्यों रहे दीदार मुस्तफा से, उस पर तायद करते हैं, कहते हैं सांप के काटने के बाद इंसान जिंदा नहीं रहता अगर नेचुरल होता, लेकिन उसका काटना गुस्से का नहीं था इश्क का था, तो तू भी आशिक है मैं भी आशिक हूं, मुझे भी जाने दे मैं भी दीदार मुस्तफा के लिए सदियों से बैठा हूं। तो इसीलिए तकलीफ हुई लेकिन उसका भी इजहार उन्हीं क्या सुथ ने कहा, उन्होंने फिक्र यही है आपने जीने का बहुत तकलीफ हो रही है, बल्कि कहा जब आंसू टपके रुखे मुस्तफा से गए आप जागे तो आपने कहा क्या बात है, तो उन्होंने जाहिर कर दिया कि ना मैं डर रहा हूं ना मुझे खौफ है, बस बता दिया कि किसी चीज ने मुझे काटा है, लेकिन ये नहीं कहा कि मुझे तकलीफ से आंसू है, लेकिन आंसू का राज छुपा गए ये तो मैं शुक्र अदा कर रहा हूं थे अपने रब का। हाय हाय, तो वो सांप का जो काटा था वो अगर वाकई काटना होता उसका तो उसके बाद तो जहर फैल जाता आदमी जिंदा का रहता मर जाता है, तो उन्हें शिकायत ही नहीं की, तकलीफ ही कुछ नहीं, तो फिर भी अल्लाह एक और एजाज मिलता है सरकार, देखें आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अबू सदीक आपने कहां काटा, कहिए अंगूठे पर, आपने लाबे दहन लिया और अंगूठे को वहां लगा दिया, कहां कर लो आप कहां गया अबू सदीक के कहां लगा, सुभान अल्लाह क्या जिस्म बन गया अबू सदीक का, ये भी आंसू हुए और फिर इसी सदीक की आंखों से आंसू गिरते हैं। जब नबी पाक में विशाल हुआ इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो बड़े कोहराम था, अजीब हालात थे उस वक्त, तब अबू सदीक कोने में खड़े खामोशी के साथ बड़े मुतबर तरीके से, कोई चीख पुकार कुछ नहीं, बल्कि बहुत ही होश और खामोशी के साथ, वाहिद एक सहाबी थे जिन्हें होश कायम था उस वक्त, हालांकि सबसे ज्यादा सोचना है कि उन्हीं पे असर ज्यादा होता, लेकिन अल्लाह ने किस तरह संभाल लिया उनको, क्योंकि उन्होंने पूरी ही सहाबा को संभालना था, तो सबसे ज्यादा होश अल्लाह पाक ने उनको अता किया, होश दिया, लेकिन आंख से फिर वही आंसू निकलना शुरू हो गया, वो आंसू कौन से थे जो आंख से निकले वो सदीक के, वो आंसू जुदाई के आंसू थे, क्या आप मुझसे जुदा हो रहे हैं। तो मैं कहने का मतलब यह है दोस्त कि चीज एक ही होती है, नाम एक होता है लेकिन काम मुख्तलिफ होते हैं। तो मैंने जो आपके सामने अर्ज की एक बात जिससे ये बात निकली कि गम का इलाज किससे है करके देख ले, हम इलाज सही कर ही नहीं रहे, मुफ्त इल्जाम देते हैं ये दौलत की वजह से बीमारी की वजह से परेशानी, बिल्कुल नहीं है, नेचुरल चीजें सारी, अगर इलाज सही हो जाए तो सवाल ही पैदा होता है कि किस चीज से आदमी को फिक्र महसूस हो, इलाज किससे करना है हमने, गम से करना है, करेंगे गम से इलाज। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कौन सा गम, तो भाई एक ही गम से हम वाकिफ हैं और वो है गमे दुनिया जिससे हम परेशान होते हैं, जहां हम सो सकते हैं ना लेट सकते हैं, वो सारी परेशानी मैंने आपको बताई, इसको क्या कहेंगे हम, गमे दुनिया है। अब इसका इलाज किससे होगा, गमे रब से होगा, गम दोनों है, नहीं समझे मेरी बात, गम दोनों है, वो गम क्या है, वो बर्बाद करके रख दिया हमारी जिंदगी को, उसने चैन सुकून ही नहीं रहा, कोई चीज हमें चैन दे ही नहीं सकी, ना दौलत दे सकी, ना दौलत दे सकी, हत्ता कि ये कि इबादत भी इसमें हमें चैन नहीं दे सकती, बताऊंगा इसके ये फिक्र नोट कर लेना, इसका मैं जवाब दूंगा आपको, हजारों लाखों इबादत वाले हैं मुतमईन नहीं है, परेशान हाल है, वो क्या वजह है, अल्लज़ीन तत्मईन्न क़ुलूबुहुम ज़िक्रुल्लाह, कुरान तो कहता है कि जिक्र इत्मीनान देता है, तो ज़ाकिर परेशान क्यों है, आओ मैं दिखाता हूं आपको, भागे फिरते हैं पैसों के लिए, भागे फिरते हैं दुनिया के लिए, भागे फिरते हैं परेशानी में, इतनी इतनी गोलियां खा लेते हैं नींद की, क्या उनके दिल में वसवसा नहीं आएगा, आज ये वसवसा खत्म करता हूं मैं आप सही इलाज के साथ, क्यों अल्लाह ने जवाब दें, या तो आप कुरान तो कहते हैं अल्लज़ीन तत्मईन्न क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, ज़ाकिर क्यों आप कहते हैं कि हज़रत मैं तो परेशान हूं, याद रखना उसका जवाब देता हूं मैं अभी इंशाअल्लाह। तो इलाज क्या है, गम का इलाज किससे है, गम है, ये जो गम है पहला गम क्या है, गमे दुनिया है, गमे फिक्र है, गमे बच्चे हैं, माल का गम है, दुनिया का गम है, बच्चों का गम है, सेहत का गम है, घर का गम है, बाल का गम है, दुकान का गम है, कारोबार का गम है, मकान का गम है, पेट का गम है, सिर का गम है, गमी गम गमी गम, इसका इलाज किससे मिलेगा, गम से मिलेगा, लेकिन कौन सा गम हो, गमे दुनिया, गमे दुनिया नहीं बल्कि क्या हो, गमे अल्लाह हो, वो कैसे है, वो कौन सा गम है, गमे अल्लाह, हाँ वो गम क्या है, वो गम क्या है, अल्लाह हो, गम क्या है, वो गम अजीब है, वो गम क्या है कि अल्लाह कहीं मुझसे राजी भी है या नहीं, एक फिक्र हो अल्लाह मुझसे राजी भी है या नहीं है, हाय हाय हाय, ये इतना मीठा इतना प्यारा इतना मजेदार गम है कि इस गम में ना सोने भी बड़ा लुत्फ आता है, उस गम में
سونے میں بھی مصیبت آتی ہے جب انسان اس غم کے اندر سوئے گا بھی, اگر سو بھی گیا اتفاق سے بغیر گولیوں کے تو کیا ہوگا, پھر بھی خواب میں اسے وہی چیز نظر آئیں گی, اللہ ہو. لیکن اس غم کے ساتھ اگر رات بھر جاگ بھی رہا ہے, رو بھی رہا ہے, چیخ بھی رہا ہے, اور غم کیا ہے کہ اللہ میرا مجھ سے راضی بھی ہے یا نہیں ہے, کہ اللہ مجھ سے راضی بھی ہے یا نہیں ہے, کتنا پیارا غم ہے, کتنی پیاری فکر ہے, آپ سوچیں. جب یہ فکر آ گیا, یہ غم لگ گیا, اس غم کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ غم گیا کہاں. نہیں سمجھے بات, یہ غم نہیں ہے ہمارے, یہ غم آ جائے اللہ کے فضل سے کہ بس فکر ایک چل جائے کہ میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہے, کہ میرا رب مجھ سے راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا, راضی ہے یا نہیں ہے. سچے عاشق ہوگا جو یہ سوچ سکتا ہے, سچی محبت کی دلیل ہے یہ, اپنے محبوب کے بارے میں یہ سوچنا ایک عاشق کا کہ کہیں ناراض ہے یا نہیں ہے. سوچتا نہیں آدمی, دیکھ لیا دنیا کے اندر جن چیزوں سے ہمیں محبت ہے, اس کوشچن آتا ہے ذہن میں نہیں آتا, کیا یہ دکان چلے گی یا نہیں چلے گی, یہ گاڑی اچھی بھی ہے یا نہیں اچھی, اسے شادی کر لوں بیوی صحیح رہے گی یا نہیں رہے گی, یہ وہ سوال ہے یا نہیں ہے. یہ کہ دنیا کی بات ہے, اس میں یہ سوال یہی آتا ہے جو ہمیں جاگر, جو ہمیں پریشان کرتا ہے, یہی چیزیں پریشان کرتی ہیں نا, یہ نوکری یار صحیح رہے گی بھی یا نہیں رہے گی, یہ کاروبار صحیح کام چلے گا بھی نہیں چلے گا, یہ مکان میرا صحیح رہے گا بھی نہیں رہے گا, اور جہیں اگر اس کے جگہ یہ آ گیا کہ میرا رب مجھ سے کچھ ہے بھی یا نہیں ہے, پہنچ گیا نہیں پھر. لیکن کس کو آتا ہے, ملین ٹریلین میں سے کسی کو نہیں آتا یہ بات, جن کو آئی ہے ان کی زندگی کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ حیران ہوتے ہیں کہ لوگ پریشان کیوں ہیں, کس چیز کی پریشانی ہے ان کو, یہ غم کس چیز کا کر رہے ہیں, کیا غم ہے, بستر مرگ پر ہوں, ہاسپٹل میں ہوں, پریشانی میں ہوں, کئی کئی دنوں سے بھوکے ہوں, حالات میں ہوں, مصیبت میں ہوں, لیکن وہ سب دنیا دیکھ رہی, اس کے لیے کہتا ہے ہی کچھ نہیں, مجھے تو ایک ہی غم ہے کہ میرا رب مجھ سے خوش بھی ہے یا نہیں ہے, اور کسی چیز کا بھی بلائم ادھر نہیں جا رہا. سبحان اللہ, اگر کوئی چیز نہیں ہے یا پریشانی جو ہم کہہ رہے ہیں پریشانی, کتنا پریشان ہے تو تو ہوگا, میں تو نہیں ہوں پریشان, میں راضی ہوں, اللہ میرا رب راضی, میں راضی, رضا پر خدا, میں راضی, بابا مجھے کیا ضرورت, دنیا بھی آ جاتا ہے. یعنی ساس سوچتی کہ ماں سوچتی بیوی سے اس کی چل بھی رہی ہے نہیں چل رہی, ساری رات نہیں جاگتا, تو اگر بیوی سے محبت, ماں میں بڑا خوش ہوں بیوی سے, پرواہ نہ کر, بالکل ٹھیک ٹھاک, یہ دنیا کی محبت بتا رہا ہوں. یہی عشق جب اتر جاتا ہے اللہ کے ساتھ, اللہ ہوا, دنیا والے کہتے ہیں ایسے کھانا نہیں کھائے بےچارا پریشان ہوگا, تو میں بڑا خوشی ہوں بھائی, میں تو بڑا راضی ہوں اپنے رب سے, مجھے ملتا ہے, میں خوش ہوں, مجھے نہیں بولوں بھائی مجھے کیوں پریشان کرتے ہو, مجھے ضرورت نہیں کسی چیز کی, میں راضی ہوں. اس وقت سب سے مطمئن انسان ہوتا ہے, یا ایتم نفس مطمئن ارجی الی ربی کی راضیتم مرضیہ, کیا عجیب بات ہے, آپ سوچیں اللہ ہمارے سینے میں یہ عشق پیدا فرما دے, اسی لیے جمع ہوئے ہیں بھائی, ہم یہ باتیں ہم کرتے ہیں بیٹھ کر, دیکھیں تو غم کا علاج کس سے ہوگا. اب یہ کوشچن آپ مجھ سے کریں کہ جی آپ نے بتا دیا غم کا علاج کس سے ہوگا, تو غم لائیں کہاں سے, ان غموں کو تبدیل کیسے کریں, حضرت آپ بتائیں, سنیں پھر دل سے کہہ رہے ہیں نا, جس نے دل سے کیا ہے وہ غم آ جائے گا انشاءاللہ, یہ غم ختم ہو جائے, بس پھر یہ غم ہو جائے کہ اللہ مجھ سے راضی ہوا نہیں ہوا, میں یار ایک نماز اور پڑھتا ہوں, ایک اور سجدہ کرتا ہوں, ایک تسبیح اور کرتا ہوں, شاید اس سے راضی ہو جائے, شاید اس بات سے راضی ہو جائے. کہتے ہیں جس سے دکان پہ ہوتا ہے چلو آدھا گھنٹہ اور کھول لیتے ہیں شاید گاہک آ جائے, یا 15 منٹ اور کھول لیتے ہیں کیا فرق, شاید کوئی گاہک آ جائے, کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں, ہاں چلو یار آدھا گھنٹہ ایکسٹرا لگاتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے, چلو کوئی بات نہیں یار اوور ٹائم لگاتے ہیں اس طرح, چلو یار 15 منٹ اوور ٹائم, آدھا گھنٹہ لگا دیتے ہیں اوور ٹائم, کیا رات تو گزر ہی گئی یار, صبح اکٹھے سو جائیں گے یار, چلو رات لگائی دیتے ہیں, کیا ملتا ہے پاؤنڈ, کہتے ہیں نا. اور ادھر ہو جائے اللہ ہو, چلو یار آج رات جا کے گزارتے ہیں, میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, ہائے ہائے کیا زندگی میں فرق. یہی ایک زندگی ہے ہماری, ایک ہی آنکھیں آنسو نکل رہے ہیں مختلف ہیں, ایک ہی زندگی ہے غم نکل رہے ہیں لیکن مختلف غم ہے, کسی کے جسم سے یہ غم نکل رہا ہے اور کسی کے جسم سے اس کی آئیں اور غم نکلتا ہے, ہیں دونوں ہی غم میرے دوستوں. तो भाई ये गम आए कहां से? हदीस सुना आपने समझ लें। तो आप कहते हैं बातें बढ़ता रहता है, हदीस सुना। हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते रिवायत करते हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने माफी दी, माफ कर दिया, तो सारे फरिश्ते आए आपको मुबारकबाद देने के लिए। जिब्रील भी, मीकाईल भी, इस्राइल भी, जो बड़े बड़े फरिश्ते थे, अब बड़ी मुबारकें दी आपको। सुभानअल्लाह, कि वाह कमाल, माशी सब मुबारकें देने आए, माशाल्लाह आपके तो मजे हो गए, अल्लाह ने आपको माफ कर दिया, आपकी बख्शिश हो गई। तो अल्लाह सुभान अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, सुन लें गौर से, सुने जरा, क्या आदम तूने जो विरासत दी अपनी औलाद को, वो फिक्र दिया है, गम दिया है, परेशानी दी है, दुनिया में जा रहा था कि तू ये विरासत लेके जा रहा है अपनी औलाद के लिए, और तेरे रब ने जो इसके लिए चीज दी है, देखिए अब सुने, ये तमाम चीजें कौन लेकर आ रहा है? विरासत में लेके आ रहे हैं हम सब गम फिक्र, ये अल्लाह ने वही फैसला कर दिया कि मैं जो चीज दे रहा हूं उसके मुकाबले में, अब आ रहा है इलाज इसका, गौर से सुन लेना क्या आ रहा है। सुनना है अभी, पांच पांच पाउंड निकालें फिर बताता, देखिए कैसा अच्छा इलाज आ रहा है। अल्लाह बता रहे क्या आदम, तूने तो विरासत में इनको गम दिया, फिक्र दिया, और गम ही लेके आ रहे हैं, और मैं क्या दे रहा हूं? मैं इनको जो दे रहा हूं वो तौबा दे रहा हूं, और तौबा अता कर रहा हूं। ये इलाज है इसका, क्या दिया? फरमाया जब तक ये तेरी औलाद, ये हदीस चल रही है मफ़हूम हदीस का, कि जब तक ये औलाद तेरी तरह मुझे पुकारेगी जिस तरह तूने मुझे पुकारा था, तो मैं इनको तेरी तरह इसी तरह माफ करता चला जाऊंगा। जब तक जिस तरह तूने पुकारा ये पुकारेंगे, मैं भी इसी तरह माफ करता चला जाऊंगा, और इनकी तौबा के बदले रोज़े क़यामत में तौबा करने वाले को कमर कमर से इस हाल में निकालूंगा कि वो हंसता हुआ और मुस्कुराता हुआ बाहर निकल रहा हो, और जब तक दुनिया में रहेगा आदम सुन, वो तौबा करने वाला शख्स जब तक दुनिया में रहेगा, मैं उसकी सारी दुआओं को कबूल करता चला जाऊंगा। इतना बड़ा मुकाम है ये सच्ची तौबा। जिस वक्त बंदा सच्ची तौबा करता है, समझ आ गई बात, बंदा जब सच्ची तौबा करता है तो क्या मिलता है उसको? सारे गम दूर हो जाते हैं और अल्लाह का गम उसको मिल जाता है। अब आता हूं उस बात पर, मैंने आपको बताया था कि भाई इबादत से भी अल्लज़ीना यस्कुनूना क़ियामन व क़ऊदन, जो है अल्लज़ीना तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम, जो है क्यों नहीं मिलता सुकून? नमाज के बाद भी सुकून क्यों नहीं मिलता? तिलावत कुरान के बाद भी सुकून क्यों नहीं मिलता? इन तमाम चीजें करने के बाद भी हराम की तरफ क्यों जाते हैं? बुराई की तरफ क्यों जाते हैं? हर तरीके से पैसा क्यों कमाते हैं? उस वक्त मुतमिन होने के लिए करते हैं ना सारे काम, फिक्रों को दूर करने के लिए करते हैं ना सारे काम, क्यों करते हैं? नमाज भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, जिक्र भी करते हैं, कुरान की तलावत भी करते हैं, हज भी करते हैं, ज़कात भी करते हैं, तो उसकी वजह क्या है कि फिर फिक्र क्यों गालिब है, तफरकात क्यों गायब है? वजह साफ जाहिर है कि तौबा की है, सच्ची तौबा नहीं की, कहीं तौबा में कमी आ रही है। कौन सी तौबा? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अगर अतीउल्लाह से तौबा कर चुके हो, पाबंद नमाज हो चुके हो, तो अतीउर रसूल कहां गया? अपनी तौबा में उसको भी शामिल करो कि कोई जिंदगी का लम्हा भी ऐसा ना गुजरे जो सुन्नत के खिलाफ हो। इस ताजू पे बैठ जाओ, तोड़ लो अपने आप को, फिर अतीउल्लाह व रसूल के लफ्ज़ पर तौबा इस ताजू पे बैठ के कर लो। खुदा की कसम, कुरान और हदीसें सब शाहिद हैं, अभी हदीस पर से सब चीजें शाहिद हैं कि तू फिर वो इंसान बन जाएगा कि दुनिया का फिक्र नहीं, गम आखरत और गम अल्लाह तुझे नसीब हो, तुझसे बड़ा कोई मुतमिन शख्स नहीं होगा। अगर ये तौबा ना हुई, अगर ये तौबा ना हुई तो फिर क्या है? चाहे कितने ही तू करते रहे इबादत करते रहे, कितने ही तू अपने इलाज करता रहे, लेकिन गम दुनिया के अंदर तू डोलते ही रहेगा। गम के साथ आया और गम के साथ ही दुनिया से चला जाएगा। मेरे भाइयों, सच्ची तौबा बहुत बड़ी चीज है, बहुत आसान है, बहुत आसान चीज है। एक हबशी आया नबी करीम से, सुन
सल्लासम के पास आके कहने लगा कि या रसुल्लासम बहुत सख्त गुनाहगार हूँ, बड़ा गुनाह किया है, बहुत सख्त गुनाह किया है मैंने। अजीब सवाल करता है, बहुत सख्त गुनाह किया है, अल्लाह मुझे माफ कर देगा? तो नबी बस उसने देखा, कहता हाँ, बस एक जवाब दिया। क्या कहा? हाँ, कुछ नहीं पूछा कितने गुने कैसे गुना, वहां तो है ही जवाब नहीं, आसमान तक भी गुना चढ़ गए हूं। ये तो वादा किया अल्लाह ने कि तेरी तरह जब तक पुकारते रहेंगे तो तेरी तरह मैं पुकार को सुनता रहूंगा। पुकार के देखिए, लेकिन तौबा कौन सी? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अपनी मर्जी की तौबा नहीं। ये करूंगा जी ये मजबूरी है, ये कर लेंगे ये मजबूरी है, ये करूंगा ये इस दिन के बाद करूंगा, ये जी इस उम्र के बाद होगी, ये उस उम्र के बाद होगी, ये चलता नहीं है मामला, ये हिसाब नहीं चलता है। अजी ये हो जाए, बड़ी गलती से हो गया था, फिर करूं? नहीं, जब तौबा करनी तो ऐसे हबशी की बात बता दो। क्या तौबा करना चाहते हो? ये तौबा नहीं, उसने कहा कि मैं अल्लाह ताला, मैं अगर माफी मांगू तो अल्लाह मुझे माफ कर देगा? तो आपने देखा था, हाँ, कोई तजुब नहीं किया, तो चल पड़ा। फिर आएगा कि नहीं यार, मैं जो गुनाह करता हूं या तौबा करूंगा अल्लाह देखेगा? कहते बिल्कुल देखता है। अल्लाह, उसने वही चीख मारी और चीख मार वही जान दे दी उसने। तौबा तो नसूह होगी इसकी, उसकी अब क्या जिंदगी। तौबा के बाद इतना पुरसकून इंसान हो जाता है, वही मैं बता रहा हूं आपको, गमों की क्या बात। तौबा के बाद इतना पुरसकून हो जाता है कि दुनिया में रहना पसंद नहीं करता वो शख्स, इस कदर अजीम इंसान वो बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुकून और पुरसकून इंसान हो जाता है। लेकिन क्या करना पड़ेगी? इलाज तो यही है दोस्तों, अगर इलाज समझ गए हो तो दो ही चीजें हैं, या तफक्कुरात दुनिया के अंदर फंसे रहो फंसे रहो फंसे रहो और मरने के बाद भी फिर दूसरी तरफ चले जाओ। यही है ना, ये तफक्कुरात दुनिया हमें यहां भी परेशान रखती हैं और असल हॉस्पिटल चलने नहीं देती है, फिर मरने के बाद कहां पहुंचाती हैं? अब तो मर के ये कहते हैं कि क्या है वो चैन, चैन से निकल है कि भाई हम मर भी गए, अब तो कहते हैं, अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे? अब तुम कहते हैं जी चलो मर जाए, अच्छा मर जाए जान छूटे जी, मर जाए जान छूटे, उनका मरने के बाद भी चैन ना पाया तो फिर किधर जाएगा, उधर क्या हिसाब होगा? असल चीज यह है कि यहीं से चैन इख्तियार कर लो, यहीं सब कुछ अल्लाह पाक ने इस दुनिया में हमें दिया है, यहीं जन्नत दी है, यहीं आखरत दी है, यहीं कुर्ब दिया है, यहीं मोहब्बत दी है, यहीं माफ़त दी है, यहीं इरफान दिया है, हर चीज की तफसीर मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह, अलिफ लाम मीम से लेकर नास तक हर चीज की तफसीर अल्लाह ने बिखेर के रख दी इस दुनिया के अंदर। चॉइस हमें दे दिया कि चाहो जो चाहे तुम ले सकते हो, इट्स अप टू यू। जो जिस तरीके से मेरा हबीब मेरा रसूल तुम्हें बता रहा है कि तुम मुझ तक पहुंच सकते हो, तुम हर चीज हासिल कर सकते हो, तो बढ़ते चले आओ। तौबतन नसूह, सच्ची तौबा अख्तियार कर लो, कोई चीज डंडी ना मारो उसमें, तो एक सेकंड नहीं गुजरता उस हबशी की तरह आदमी इस दुनिया से फारिग हो जाता है, जिस्मानी तौर पर या फिर रूहानी तौर पर। करना चाहिए ना दोस्तों? अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह पाक आज इस रात के सदके से हमें ऐसा जाकिर बना दे अल्हम्दुलिल्लाह कि जो सच्ची तौबा करने वाला हो, वतीउल्लाह व अतीउर रसूल वाली तौबा हो, अल्लाह के भी हुक्म की पूरी पाबंदी, नबी करीम की हुक्म की पूरी पाबंदी, तब जाके फल नजर आएंगे हमें अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी के साथ। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए।